ओम शांति। आ जाओ इसके पीछे आ जाओ, देखो इस माता के पीछे आ जाओ। आज हम थोड़ी चर्चा गुणों पर करेंगे। उनसे पहले एक बहुत सुंदर चीज जो सबको रियलाइज करनी है संगम पे, भक्ति में तो उसे दूसरे ढंग से कहते हैं, सब कुछ भगवान कर रहा है, सुख दुख वही दे रहा है, लेकिन संगम युग पर विशेष इस बात को समझना भी है गहराई से और रियलाइज करना है कि हमारे साथ बाबा की शक्तियां काम कर रही हैं, तब हम कुछ हैं। यदि बाबा की शक्तियां हमारे साथ न हो तो हम कुछ नहीं है, यही सत्य है। इसको रियलाइज करना, स्वीकार करना, इससे जीवन में कई चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे बाबा के वरदानों में, मूल्यों में आता रहता है मैं और मेरे का त्याग। ये बोझ पैदा करते हैं मन पर, इन दोनों का त्याग। ये हमारे ज्ञान और योग के मार्ग की सबसे सुंदर प्राप्ति है। कोई इन दोनों का त्याग करने में सफल हो जाए तो योग युक्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बात पर सभी को बहुत ध्यान देना है। भाई पीछे वाले थोड़े आगे आ जाओ, कुमारी आओ, आओ नीचे बैठ के योग भी अच्छा लगता है। खाना भी वास्तव में नीचे बैठ के ही खाना चाहिए, पर अब टेबल कुर्सी का फैशन है, हजम जल्दी होता है भोजन अगर नीचे बैठ के खाते हैं पैर मोड़ के, क्योंकि अगर हमारे पैर नीचे हैं तो सारा ब्लड नीचे पैरों में जा रहा है, पेट में नहीं जाता। पैर मुड़ गए तो पेट में जाएगा, हाजमा जल्दी होगा। गुजरात में अभी तक भी यही प्रथा चलती आ रही है। चल रही गुजराती हैं, कोई पट्टे रख देते हैं दो, एक आगे एक पीछे थाली के लिए भी, और नीचे बैठ के ही खाते हैं। तो हम गुणों पे चर्चा करेंगे। सबसे अच्छा गुण कौन सा है? बोलो। ठीक बहुत है, संतुष्टता, सरलता है, दृढ़ता। माताएं बताएं पवित्रता, तो बीज हो गया। माताएं बताएं सहनशीलता, सबसे अच्छा गुण लगता। और बताओ मधुरता और रमणीकता, नम्रता, सारे ही तो अच्छे हैं। हर एक का एक दूसरे से ज्यादा महत्व भी है। कोई व्यक्ति बहुत संतुष्ट भी हो लेकिन अच्छा न बोलता हो तो भी लोग उसे पसंद नहीं करेंगे ना, चाहे वो कितना भी संतुष्ट है। कोई व्यक्ति बहुत सहनशील तो हो लेकिन निरहंकारी न हो, वहां भी बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। तो हम कुछ गुण चुन लें जिनसे सारे गुण खींचे चले आते हैं। उसमें पहला गुण संतुष्टता, जिस पर बाबा की बहुत मूल्यां चली हैं आज तक, जिसमें दो तीन महावाक्य बहुत गुहे हैं। एक है संतुष्टता ही संपूर्णता है। जब आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगी तो संपूर्णता आ जाएगी। दूसरा है संतुष्टता बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है ये बहुत बड़ा, आकर्षण है इसमें बहुत ज्यादा। जिसके मन में उथल पुथल ज्यादा है, जिसके मन में इच्छाओं का वेग ज्यादा रहता है, उनकी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। और तीसरी बात जो मुझे तो बहुत याद रहती है, संतुष्ट मणियों का प्रकाश सारे विश्व तक फैलता है। बहुत गुजिया मुरली है, अब से तीन सीजन पहले की है। संतुष्ट मणियों का प्रकाश सारे विश्व तक फैलता है। आत्मा संतुष्ट कब होती है संगम युग पर विशेष, कब होती है संतुष्ट? ठीक बोल रहे हैं, कब होती है भाई बोलो? जब सर्व प्राप्तियां हो जाएं, उसके बिना हुई संतुष्टता या तो कमजोरी बन जाती है या कहीं कहीं मनुष्य को बहुत ढीला करती है। ईश्वरीय प्राप्तियों में संपन्न तो आत्मा पूरी तरह तृप्त हो जाती है। मुझे कहानी याद आ गई इस बीच में, मैंने कल ही परसों कहीं सुनाई थी क्लास में, बाबा की कहानी है, ब्रह्मा बाबा की, मधुबन की है, यहीं की। बलदेव भाई एक होते थे, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, प्रगति पथ प्रदर्शक जिन्होंने मैगजीन थी ना, उन्हें छोटी सी पाक्षिक, तो वो सांप से बहुत डरते थे। तो उन दिनों यहाँ सांप बहुत निकलते भी थे, अब तो बहुत कम है, नहीं तो सांप दिखाई देते रहते थे। घूमने जाएंगे तो दो चार जरूर दिखाई देंगे। पीछे कई बार अकाल हुए यहाँ तो मर गए सब, अब कम है। तो कोई सांप आ गया, उसने ही देखा, वो भागा भागा बाबा के पास आया। बाबा बहुत बड़ा सांप आ गया, बाबा गए उसके साथ, बाबा ने सांप को भी दृष्टि दी, बाबा तो दृष्टि देते हैं ना सबको, और सांप जो था गुंडली मार के बैठ गया वहीं। बाबा ने उसे कहा, बच्चे किचन में जाओ टोकरा लाओ। वो भागा भागा टोकरा लाया, टोकरा रख दिया उसने। अब बाबा ने उसे क्या कहा कि सांप को दोनों हाथों से उठा के टोकरे में रख दो। बोलो कौन कौन आप में से रखने को तैयार होंगे बहनों में से? बहनों में कोई नहीं, बहनें टोकरे में बैठ जाए। तो वो घबराए, वो पहले ही डरता था। अब बाबा ने उसकी तरफ को जरा पावरफुल दृष्टि दी, पावरफुल समझते हैं ना। वो तो हिंदी में शक्तिशाली हुआ पावरफुल का, और कहा, बच्चे कौन ऑर्डर दे रहा है? ऐसे कौन दे रहा था ऑर्डर? स्वयं भगवान, जिसकी दृष्टि पड़ते ही अब हम समझ सकते हैं सांप हो गया हिप्नोटाइज। अब उसे कुछ पता नहीं सांप को, मैं कहां हूं, कौन है, क्या है, वो जैसे एक भ्रमित हो गया, नशे में आ गया उस, ऐसे नशे में कि उसको अपनी सुध-बुध नहीं रही। अब बलदेव को डर लग रहा और प्रभु जी की आज्ञा हो रही है, दो दुविधाएं बीच में, तो उसने आंखें तो की बंद, ऊपर से उठा के टोकरी में रख। अब बाबा ने कहा, ये कपड़ा इस पे डालो और जाओ इसे सिर पे उठाओ, जंगल में छोड़ के आओ। अब नई समस्या कि अब तक तो बाबा साथ था और अब ये मेरे अकेले के सिर पे होगा। खैर बाबा की वाणी में तो पावर थी और वो भी समझा, तो वो उसने डरते डरते उठाया और कहीं पास ही फेंक के जल्दी आ गया। तो बाबा उसे क्या कराना चाहते थे, उसका डर निकालना चाहते। हापुड़ में जब हरी आर्य समाजियों ने अपने विरुद्ध बहुत झंझट कर दिया, झंझट माना बहुत, वो प्रसिद्ध हो गया था उन दिनों सारे भारत में हंगामा आर्य समाजियों का, तो इसके बलदेव के गले में सांप डाल दिया। तो अब ये सांप से डरा नहीं, वहां की प्रैक्टिस कराई थी ना बाबा ने, इन्हें सांप निकाला और उसके गले में डाल दिया, वो भागा। तो बाबा का ऐसा ऐसा भी बहुत सुनने में आता है, तो मजा आता है कि बाबा भी आत्माओं में पावर भरता है। तो मुझे एक प्रश्न किसी ने पूछा, मैं आपके सामने वो प्रश्न रखता हूँ। बहुतों के मन में उठता है, जब से बाबा के बने समस्याएं बहुत आ रही हैं। भगवान के बन गए तो समस्याएं भाग जानी चाहिए थी, हमारा गुरु था उसका नाम ले लेते थे तो समस्याएं खत्म हो जाती थी, अब यहाँ बाबा को जितना याद करते हैं समस्याएं बढ़ती जा रही। क्या है बोलो, क्या उत्तर है? समस्याएं आगे बढ़ाएंगी। और माताओं का उत्तर पेपर है ये। तो समस्याओं का आना, इसमें बाबा की कोई बात नहीं है, बाबा का इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। समस्याएं आती है मनुष्य के अपने कारण, चाहे पास्ट के विकर्म हो चाहे वर्तमान के संस्कार हो। देखो बहुत सारी समस्याएं संस्कारों के कारण आ रही हैं, चाहे मनुष्य की अपने मन की कमजोरी हो। बाबा का काम है, और ये काम बाबा करता ही है, हमें शक्तियां देना ताकि हम समस्याओं को सहज पार करें। तो हमें ये याद रखना है, बाबा का बनने पर समस्याएं नहीं आएंगी, ये नहीं, बाबा का बनने पर हम समस्याओं को सहज पार करेंगे, बाबा का बनने पर समस्याएं हमारी शक्तियों को बढ़ाएंगी, बाबा का बनने पर, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, हमारा विवेक जागृत होगा समस्याओं में। देखो बहुत सारे लोग समस्याएं आने पर सवेरे जल्दी उठ के योग लगाने लगते हैं, और समस्याएं ना हो तो 6 बजे उठते हैं, तो बाबा क्या करेगा, भेजेगा ना। मान लो हम ये भी कहें तो बाबा समस्याएं भेजेगा ना, इन्हें चुस्त कर दो जरा और इन्हें पावरफुल भी बना दूं। हमें बाबा बहुत पावरफुल भी बनाना चाहता है। हम हर चीज को इस दृष्टि से देखें, आपने सुना हो आजकल तो वो है नहीं, गुरु शिष्य बनाते थे, शिष्य बहुत नहीं बनाते थे, आजकल की तरह नहीं कि लाखों बना दिए मतलब कुछ नहीं, गुरु मंत्र दे दिए नाम दे दिए लाखों शिष्य। शिष्य बनाते थे 2, 4, 5, 10, उनको ऐसा बनाते थे जैसा वो स्वयं है, तो उनकी अच्छी परीक्षाएं लेते थे, उन्हें भूखा रखते थे, उन्हें तपाते थे, धूप में बैठा देते थे, ताकि वो कितने मजबूत हैं, ताकि वो आगे चल के साधनाएं कर सकेंगे क्या, ये पता चल जाए। ऐसे ही शिष्य बन गया खाने पीने के लिए, उससे तो कुछ नहीं ना, कि गुरु के पास चढ़ावा बहुत आता है, माल मिलेगा अच्छा, वो तो लक्ष्य नहीं था, उसे पावरफुल बनाना था कि ये धर्म के काम आए, ये संसार में धर्म का प्रचार प्रसार करें, ये धर्म को बल दें, ये प्योरिटी में मजबूत रहें, ये कहीं भी विचलित न हो। तो अच्छे जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को बहुत मजबूत कर देते थे, उनके मन से डर निकल जाए, अब तुम कहीं भी जाओ संसार में तुम्हारी हार नहीं होगी। तो बाबा भी हमें बहुत शक्तिशाली बनाता है, इसलिए इस संकल्प से कभी अपने को निराश नहीं करना है कि बाबा का बनकर भी ये क्यों। सभी सोच लें, जिसको भी ऐसा संकल्प आता हो वो इसको ठीक करे। मुझे एक नशे की और बात सुनानी है आपको, अभी मैं बाहर था तो एक लड़का कुमार, डेंटल सर्जरी का कोर्स है ना 4 साल का मेडिकल, वो कर रहा था, तो वो मेरी सेवा में था। मैंने उसे पूछा क्या करते हो, तो कहा मैं डेंटल सर्जरी का कोर्स कर रहा हूँ। मैंने कहा कितना समय लगेगा, 4 साल। तो मैं तो उसको हंसी की, मैंने कहा दांत निकालने के लिए 4 साल, वो भी हंसने लगा। और फिर मैंने पूछा और भी कोई कोर्स होता है क्या आगे भी इसका, कि हाँ 2 साल और होता है। हमारे डॉक्टर गिरीश पटेल है ना, जब कॉन्फ्रेंस होती थी तो पहले बहुत हंसाते थे कि एक व्यक्ति के बाएं कान में बहुत दर्द था, डॉक्टर के पास पहुंचा जो कानों का स्पेशलिस्ट होता है ENT। तो उसको कहा, डॉक्टर साहब मेरे लेफ्ट कान में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने कहा, भाई आई एम सॉरी, मैं तो राइट कान का स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत हंसाते, ये है सब। तो इसने भी कहा कि दो साल का अगला कोर्स है, इसमें दांतों की और चीजें, बच्चों के दांत, बूढ़ों के दांत, दांत में कुछ और हो गया उसकी अलग वो नॉलेज दी जाती है। और किसी को बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर बनने के लिए 10-12 साल तो पढ़ाई पढ़नी पड़ती आजकल। MBBS कर लिया 5 साल, वो डॉक्टर आजकल माना ही नहीं जाता है, जूनियर डॉक्टर है, छोटा। तो मैं सोच रहा था, मैंने उसे भी कहा, नशे की बात तो ये है अब कि शरीर उसमें एक एक चीज, अगर सारी चीजों की नॉलेज लें तो डॉक्टर बनने में 100 साल लगे, है ना। वो शरीर जिसको बाबा ने कह दिया से भूल जाओ। भगवान हमें थोड़ा सा पढ़ाकर राजा ही दे देता है, सोचने की बात है। हम क्या कर रहे हैं, राजाई, विश्व की राजाई, और कितने ही जन्मों तक मिल सकती है। जिस राजाई को लेने के बाद कोई डर भी नहीं रहेगा। सतयुग के बारे में हम विचार करें, कितनी सुंदर दुनिया होगी वो, हमारे मन में उसकी सुंदरता का चित्र भी नहीं बन सकता, वो इतनी सुंदर होगी, हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि कलयुग में ऐसा सुंदर कुछ दिखाई नहीं देता। ये मुझे विचार चल रहा था, अभी छत्तीसगढ़ में हम थे तो सड़क से जब जाते थे तो दोनों ओर बहुत हरियाली, वन वन होते थे ना पहले, वन ही वन, लंबे चौड़े जंगल, कितने कितने किलोमीटर में, 20-20 किलोमीटर में, 40-40 किलोमीटर तक चलते ही जा रहे, दोनों ओर वो हो रहे हैं। तो हम सब चर्चा करते थे कि सतयुग कितना सुंदर होगा, उसकी तो यहाँ कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, और उसका मालिक हमें बाबा बनाता है। हम क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ मेहनत कर रहे हैं या नहीं, या छोटी मोटी चीजों में हम उलझे रह गए हैं कहीं भी। तो गुणों की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। अभी वरदान में भी आया था कुछ दिन पहले ही, ज्ञान दान के साथ गुण दान भी होगा तो सेवाओं में सफलता तेजी से होगी। गुण दान का अर्थ होता है हमें देखकर दूसरे लोग गुण सीखें। गुण कोई ऐसी चीज तो नहीं ना जो मोटी दान की जाए, हमें देखकर दूसरे लोग अच्छे अच्छे गुण सीखें। देखो क्या गुण सीखा जा सकता है आजकल, माताएं गृहस्थ में रहती हैं, दूसरे लोग आपको देखें और ये महसूस करें कि गृहस्थ में रहते हुए ये कितने हल्के हैं, ये कितने प्रसन्न हैं, ये कितने सुखी हैं। और एक हम हैं गृहस्थ में रहते हैं तो छोटी छोटी बातों में कितने झगड़ों में हैं, उन्हें रियलाइज हो। ऐसा गुणदान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो आपके पास और लोग देखें कि ये कितने हल्के रहते हैं, जैसे कुछ नहीं करते, ये गुणदान। आपके चेहरे पे प्रसन्नता होगी तो लोग कहेंगे ये भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, ये कितने खुश हैं, इन्हें क्या मिला है। तो गुण दान की सेवा के लिए हमें अपने जीवन को गुणों से भरपूर करना है। एक दूसरा गुण जो हमारी तरफ संसार को आकर्षित करेगा, निरहंकारिता। इस पे भी हम विशेष ध्यान देंगे। अहंकार झगड़ों का बीज, अहंकार किस किस का बीज है, क्रोध का बीज, टकराव का बीज, अहंकार। जिसका ही दूसरा सूक्ष्म रूप है मैंपन। हम इस अहंकार पे बहुत ध्यान दें, हम ज्ञान और योग के मार्ग पर हैं, इसको ही अध्यात्म का मार्ग कहा जाता है, स्पिरिचुअलिटी। ज्ञान और योग के इस मार्ग पर हमारी पहली पहचान होगी निरहंकारिता। जिस मनुष्य के पास अहंकार है उसके ज्ञान योग का प्रभाव दूसरे पर नहीं होगा। दूसरे को उसका अहंकार दिखेगा नहीं, मान लो हम प्रदर्शनी समझा रहे हैं, किसी को क्या पता हम क्यों कैसे हैं, लेकिन हमारे सूक्ष्म वाइब्रेशन से काम करते रहेंगे। तो हमें इस धारणा पर बहुत गहराई से ध्यान देना है, हम दिनों दिन अहंकार का त्याग करते चले और चेक कर ले हमें किस चीज का अभिमान है। किस किस चीज का हो सकता है? विशेषताओं का हो सकता है, ये तो सबसे बाद की बात थी। पहला पद का अभिमान, बोलो, मान शान का, नाम रूप का, और मोटी चीजें जो रोज दिखती हैं, पैसे का अभिमान, देह में तो ये सब आ गए, पद पोजीशन का अभिमान, शारीरिक बल का अभिमान, अब सूक्ष्म ये होते हैं सफलताओं का अभिमान, गुणों का अभिमान, मान बहुत मिल रहा है, मान अभिमान में बदल जाता है, मैं मालिक हूँ ये अभिमान, मैंने ये काम किए हैं ये अभिमान। जैसे रामायण और महाभारत में दोनों में दिखाते हैं कि अभिमान होता है लोगों को, और उधर श्री कृष्ण उधर राम लोगों के अभिमान को दूर करते हैं। रामायण में भी दिखाया, हनुमान को अभिमान हुआ एक दिन रात को, मैंने सारी लंका में आग लगा दी थी, मैंने इस को मार दिया था, वहां मैं अकेला ही चला गया था, देखो कोई मुझे पकड़ नहीं सका, दूसरे के राज में अकेला ही जाके विध्वंस कराए है तो बहादुरी ना। तो उसने सोचा, पूरी तो मुझे कहानी याद नहीं आ रही, जो पुल बना था ना, हाँ, भारत से लंका तक का, जिसकी आजकल खोज भी बहुत हुई है, कोई कहते हैं वो तो वो उसके ऊपर पहुंच गया और कहा मैं अपने बल से इसको तोड़ूंगा जहां तहां। तो वो उस पे उछले अपनी पूरी ताकत से और उसका कुछ भी ना बिगड़े। बहुत देर तक उसने ट्राई की कि कहीं से तो टूटे, वो खूब जोर से उस पे उछले और वो कहीं से न टूटे। तब उसको कुछ देर के बाद रियलाइज हुआ कि तो तुम्हारे साथ राम की शक्तियां काम कर रही हैं। जहां अभिमान आया तो शक्तियां हट गई, अभिमान आते ही परमात्म शक्तियां हमसे अलग हो गई और फिर हम कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए किसी भी चीज का अभिमान हमारे पास ना आए, मैं इंचार्ज हूं ये भी अभिमान आ जाता है। हमारे साथ क्या है, एक ही बात बाबा इसके लिए विधि बताते हैं, एक ही बात है वो, सृष्टि से भी बहुत अच्छी और सरल करने वाली बात, कि जो कुछ हमारे पास है वो परमात्म देन है, प्रभु प्रसाद है। इसको न केवल शब्दों में बल्कि हमारी गुड फीलिंग्स में आए, दुनिया में भी लोग ये कहते तो हैं, माने या न माने, भगवान ने दिया, लेकिन संगम युग पर प्रैक्टिकल में दिया। हम अपने अपने जीवन को देखें, हमें ज्ञान देना किसने सिखाया? हम में से बहुत तो बोलना भी नहीं जानते थे, ठीक है ना? दूसरे के आगे कुछ बोलने अच्छी बात है, वो आता ही नहीं था। बोलने की पावर ज्ञान तो दिया ही, पर बोलने की पावर भी हमें बाबा ने दी। और भी हम देखे बहुत सारे, मैं कभी कभी सोचा करता हूँ हमारे यहाँ लोग कवि बन गए, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। अभी भी एक जगह किसी ने एक कविता सुनाई तो बहुत सुंदर बनाई थी। मैंने उसे पूछा, बुलाया उसको बाद में, मैंने कहा क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़ाई कहाँ तक की है, कि नहीं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। मतलब इतना था कि उसको लज्जा आती थी कि भाई मैं 8वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। तो मैं देखा कि बाबा का बनने पर कवित्व तो उभर गया, वो किसी जन्म का होगा, वो उभर गया है। ऐसे ऐसे लोग कवि बन गए हैं कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी, तो ये कहाँ से? बाबा से ना। प्रभु देन, प्रभु देन में अभिमान आना, उस देन की दिव्यता को खत्म करना। जो भी प्रभु देन है उसे हम यूज कर रहे हैं, उसे हम सेवा में लगा रहे हैं, उससे हमारा भाग्य बन जाता है। देखो दिया भी बाबा ने और भाग्य भी हमारा बन रहा है, तो हमारा तो कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है। तो अभिमान आने की कहीं गुंजाइश न रखें। इसमें हम बाबा का एक महावाक्य सदा याद करेंगे, मैं सुनाऊंगा आपको, अब याद आ जाएगा। 7-8 साल पहले की मुरली से है। चाहे कोई, आपको याद हो 3-4 धारणाओं पर बाबा हर मुरली में कुछ कुछ सुनाते थे। पहला निमित्त, अब तो याद आएंगे, निर्माण। तीसरा निर्मल। चौथा भी कभी कभी बोल देते थे निर्वाण। तो 3 धारणाएं विशेष रूप से उस सीजन में बार बार आई। 6-7 दादी के समय की बात है पहले। उसमें बाबा ने एक दिन कहा, चाहे कोई रात दिन कितनी भी सेवा करे, यदि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी नहीं है तो केवल 5% ही जमा होता है। 5%? किसी बच्चे के 5 नंबर आए फेल तो छोड़ो, फेल होना भी 30-35 तक होगा, 5 वो किसी को बताएगा भी नहीं कि 5 आए हैं। इतनी गुई एक घटि है प्रभु देन, और उसको सेवा में लगाएं और हम संपूर्ण रूप से निमित्त भाव में रहें, निरंकारी रहें। देखो सेवाओं की सफलता हो गई, उसके बाद भी मनुष्य में कहीं ना कहीं मैंपन की फीलिंग आ सकती है ना, भाई मैंने इतना अच्छा किया तो सेवाएं सफल हो गई। परंतु वहां भी मैं ना आए कि सेवा की सफलता बाबा दिला रहा है। मुझे कुछ दिनों से एक बात बहुत गुड फीलिंग में आती जाती है। बाबा ने अभी अभी कुछ 4-5 दिन पहले एक बहुत अच्छी बात कही थी। ब्रह्मा बाबा सोचते रहते हैं, बहुत बच्चे आ रहे हैं, याद है सबको? तो शिव बाबा उत्तर देते हैं वैकेंसी चिंता करो ही नहीं, जैसे कल पहले हुआ था होता रहेगा। उस टाइम कोई सोचता कि 30,000 लोग आएंगे, बाप रे बाप, 30,000 तो सारे आबू की जनसंख्या भी नहीं है, इतने लोग आएंगे कहाँ रहेंगे, क्या होगा, कौन खिलाएगा, कहाँ से खिलाएंगे, तो टेंशन हो जाती ना बहुत बड़ी। तो देखो शिव बाबा के बारे में अगर हम विचार करें, शिव बाबा की स्थिति सोचें, बिल्कुल निसंकल्प है ना, जो कल पहले हुआ था वही होता जाएगा। मैं सोचता हूँ क्या हमारी भी स्थिति हो सकती है, हमें करना भी है, हमें करना भी है, ऐसे नहीं आप ही होता जाएगा। हम एक्टर भी हैं, हमें करना भी है और निसंकल्प और निश्चिंत भी होना है कि वही स्वतः ही होता जाएगा जो कल पहले हुआ था। तो देखो सेवाओं के लिए कितनी सूक्ष्म गति है कि देव कुल की सभी आत्माओं को बाबा के पास आना ही है, आना है ना। कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा, कुछ ना कुछ साधन बन जाएगा। निमित्त बनने वाले सोचे मैंने इतनों को बुला दिया, गलत हो जाएगा ना। उनको आना ही है। और दूसरी बात, एक एक महान आत्मा से बहुत बहुत देवकुल की आत्माओं का कनेक्शन है, वो उनके आकर्षण में खींचकर भी आएंगे। इसलिए यहाँ कहीं भी मैंपन और अभिमान की गुंजाइश नहीं है। उनको तो आना ही है, खेल ही ऐसा बना हुआ है कि वो आएंगे। तो देखो बाबा कैसे कैसे साधन बनाते रहता है। एक जगह में गया तो एक बहन स्वामी रामदेव का प्राणायाम भी कराती है। दो बहनें हैं, वो दोनों ने उसकी ट्रेनिंग ली हुई है प्राणायाम का, शिविर लगाती है। अब वो शिविर उसने बढ़ाते बढ़ाते 15 दिन का कर दिया और शिविर के साथ आने वालों को मुरली सुनाकर खत्म करती है कि ये है भगवान की मुरली, अब सुननी हो तो आ जाओ। उनकी सेवा इसी तरह बढ़ रही है माँ। कई शहरों में बहनें उन्हें निमंत्रण देती है, प्रचार कर दिया अखबारों के द्वारा, सिटी चैनल भी होते हैं उसपे कर दिया, कहा किसी शिविर में 500 लोग आ गए, किसी में 1000 आ गए, किसी में 250 आ गए। प्राणायाम सिखाया, आसन कराए, फिर थोड़ा ज्ञान देते देते योग सिखाया, अपना सारा ज्ञान दे दिया। भगवान कैसे आते हैं, वो क्या सुना रहा है, ये मुरली। तो मैं सोच रहा था देखो बाबा ने अपनी देव कुल की आत्माओं को निकालने के लिए क्या क्या साधन निकाल दिए। कहीं किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई जादूगरी का खेल दिखा के ब्राह्मणों को निकाल रहे हैं, देवताओं को। सुना है ना आपने, मैंगलोर का एक भाई जादूगर, वो आ गया ज्ञान में, प्रसिद्ध जादूगर उधर का। और बहन जी भी साथ हो गई, उन्होंने एक बस खरीदी, किसी ने बस दी, बस में सारा जादूगरी का सामान रखा, दो वो और दो और भाई और दो बहनें चले और जहां तहां शो करने लगे। तो जादूगर के नाम से हजारों लोग इकट्ठे हो जाएं रात को और बहनें अपना भाषण करें, ज्ञान दें, सेवा का साधन। तो कैसे बाबा चलता रहा, कई साल चला ये, आजकल नहीं सुनने में आता, इधर भी तो आए थे वो लोग। हाँ, तो कैसे कैसे बाबा देव कुल की आत्माओं को निकालेगा। उनको आना है, किसी को परिस्थिति लाएंगी, किसी को कोई प्रदर्शनी ले आएगी, कोई किसी कारण से आ जाएगा, लेकिन आकर्षित होंगे हमारे गुण स्वरूप जीवन से। तो हम अपने जीवन को संपूर्ण निरहंकारिता का, संपूर्ण सत्यता का स्वरूप बनाते चलें, सत्यता का स्वरूप। इस पर बाबा की मुरलियां चली, दो कई साल पहले की हैं, सत्यता की शक्ति, जिसमें बाबा ने बहुत डिटेल किया, पूरी मुरली एक ही टॉपिक पर है, सत्यता की शक्ति। और उसमें दो बातों पर विस्तार किया, आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित होना, परमात्मा के सत्य स्वरूप में स्थित होना। जब तुम इन दोनों स्वरूपों में स्थित हो जाओगे तो तुम्हारे पास सत्यता की संपूर्ण शक्ति होगी। तो जो सत्य ज्ञान बाबा ने दिया है उसको देने की भी शक्ति होगी। अब हम लोगों को सिखाते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन हमारे पास क्योंकि सत्यता की शक्ति नहीं, तो सत्य लोगों के अंदर जाता नहीं है। हमारी सत्यता की शक्ति बढ़ेगी तो लोग उससे जल्दी जल्दी स्वीकार करेंगे। जैसे बाबा ने एक बहुत गुह्य राज बताया हुआ है, आप में से कई उसे जानते होंगे, धर्म पिता अंत में आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि तुम संपूर्णता के समीप होंगे, तो उन्हें ज्ञान ही वो आत्माएं देंगी जो संपूर्णता के बिल्कुल समीप होंगी। तो ये ज्ञान उनके अंदर कुछ ही समय में समा जाएगा और वही ज्ञान जाकर वो अपने अपने धर्मों में देंगे। तो सभी धर्मों की स्थापना भी जैसे बाबा यही कर देता है, तो उन्हें वही ज्ञान अच्छा लगेगा जो उनके काम का है, जो उनके काम का नहीं है वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मान लो महात्मा बुद्ध की आत्मा आ गई, वो कहेगा ये आत्मा परमात्मा ये सब ठीक नहीं, इसकी क्या जरूरत है, अच्छा जीवन बनाओ, सहज मार्ग अपनाओ, वह हिंसा न करो, दया करो, प्रेम बढ़ाओ, आपस में भाईचारा बढ़ाओ, वो ये सीख लेगा और ये ज्ञान आकर जाकर वो आत्मा देगी। तो जब हम में बहुत शक्ति आ जाएगी सत्य की, तब हमारा हर बोल दूसरे के अंदर चला जाएगा, बाहर नहीं आएगा फिर। तो सभी ध्यान दें, हम अपने जीवन को गुणों का स्वरूप बनाते चलें। मधुरता बहुत सुंदर गुण है, व्यवहारिक गुण है। हम कितने भी अच्छे हों लेकिन हमारे बोल अच्छे ना हों, हम कितना भी अच्छा योग करते हों, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, हम बहुत बाबा की सेवा करते हों, हम समर्पित भाव से सेवा करते हों, लेकिन हमारी वाणी में मधुरता ना हो, क्रोध हो, टकराव की बात हो, दूसरे की इंसल्ट करने की बात हो, तो लोग हमारे समीप बिल्कुल नहीं आएंगे, दूर चले जाएंगे। हम मधुरता पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दें। एक और गुण जिसकी चर्चा आजकल हम सब बहुत कम करते हैं पर इम्पोर्टेंट, अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का अर्थ, अंतर्मुखता का वास्तविक अर्थ तो ये है कि आत्मा जो यहाँ अंदर बैठी, मुख है ना चेहरा, आत्मा जो यहाँ अंदर बैठी है उसके स्वरूप में रहना, बाहर न निकलना, कर्मेंद्रियों के आकर्षण में रहना, ये बहिर्मुखता कहते हैं इसको, शास्त्रों में भी ये शब्द है। बाह्य मुक्ता हो गई, बाहर चला गया हमारा अटेंशन, मान लो खान पान में चला गया, व्यर्थ बातों में चला गया, व्यर्थ सुनने में चला गया, तो हम बाह्य मुखी हो गए। इस पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। योगी वही बन सकते हैं जो अंतर्मुखी हो। इसलिए कभी बाबा कहा करते थे, अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर तपस्या करो, तभी स्लोगन लिखा गया था, अभी भी कहीं कहीं तो है, अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर तपस्या करो। तो हम गुणों से दूसरों को आकर्षित करें। माताओं पे तो बहुत जिम्मेदारी है, माताओं का गुण स्वरूप जीवन बच्चों में गुण भरेगा, तुरंत आकर्षित होंगे वो। गलती भी कर दे बच्चे या घर में कोई भी गलती करे, तो भी ये हमारा थोड़ा सा पेपर होता है कि कोई गलती करता है तब हम उससे कैसा व्यवहार करते हैं। गलती करने वाला निराश हो जाए, गलती करने वाला उदास हो जाए, गलती करने वाला परेशान हो जाए, या गलती करने वाले को अपनी गलती का महसूसता हो जाए, या गलती करने वाला सदा के लिए उस गलती से मुक्त हो जाए, ये हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। आप देखते हैं सब जगह कई लोग गलती करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, वही वही गलती बार बार दोहराते हैं, क्योंकि उनको बोलने वाले समझाने वालों का तरीका यथार्थ नहीं है, वो उन्हें रियलाइज नहीं कराते, वो उन्हें डांटते हैं, तुमने ये गलती की, तुम बार बार ये गलती करते हो, तुम बिल्कुल बुद्धू हो, तुम साथ में ये भी कह देंगे तुम कभी नहीं सुधरोगे, स्टैंप भी लगा देंगे। तो बेचारा जो सुधरने की कोशिश कर रहा था वो कहेगा बस अब तो देवी ने कह दिया ना, तुम कभी नहीं सुधरोगे, अब छोड़ दो सुधरना, ऐसे ही ठीक है। तो इस देवियों को ये काम नहीं करना है, समझाने का तरीका ऐसा हो जो दूसरा व्यक्ति में सुधार आए। सभी चिंतन करेंगे, गुण तो बहुत हैं, जितनी चाहे चर्चा करते रहें। ओम शांति।
प्रभु का